मैं चंदन कुमार सामाजिक विज्ञान संकाय के बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूं और आपके बीए प्रथम वर्ष के समाजशास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र की रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। आपके सिलेबस के सेकेंड यूनिट के अंतर्गत अगला अध्याय है क्षेत्रीयता, जिसकी भूमिका निम्न प्रकार है। आधुनिक भारत में जिन अवधारणाओं ने सामाजिक राजनीतिक जीवन में अपना अपना विस्तृत प्रभाव विस्तृत किया है, उनमें क्षेत्रीयता भी एक है। इस क्षेत्रीयता या क्षेत्रवाद का जन्म कब और कैसे हुआ, यह बताना तो कठिन है, पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि आज इसका जो उग्र रूप प्रकट हुआ है वह राष्ट्रीय एकता की समस्या को और भी गंभीर बना देता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश विभाजन के फलस्वरूप भारत की अखंडता पर जो कुठाराघात हुआ था वह क्षेत्रवाद के कारण और भी भयंकर हो गया है। इस क्षेत्रीयता की भावना का जनजीवन में जड़ पकड़ने के कारण आज हमारा यह देश केवल हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ही नहीं अपितु एकाधिक क्षेत्रों में बट गया है। इस क्षेत्रीयता की भावना का जनजीवन में जड़ पकड़ने के कारण आज हमारा यह देश केवल हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ही नहीं अपितु एकाधिक क्षेत्रों में बट गया है और प्रत्येक क्षेत्र के लोग दूसरों पर अपनी श्रेष्ठता को प्रमाणित करने का बीड़ा उठा चुके हैं। पर इस संबंध में और कुछ लिखने से पूर्व क्षेत्रीयता के वास्तविक अर्थ को समझ लेना आवश्यक है। हेडिंग है क्षेत्रीयता का विस्तृत अर्थ। श्री लुंडबर्ग ने लिखा है कि क्षेत्रीयता उस अध्ययन से संबंधित है जिसमें कि एक भौगोलिक क्षेत्र तथा मानव व्यवहार के बीच पाए जाने वाले संबंध पर बल दिया जाता है। इस रूप में क्षेत्रीयता एक प्रकार का विश्व परिस्थिति विज्ञान है, क्योंकि इसकी रुचि विभिन्न क्षेत्रों के बीच तथा एक ही क्षेत्र के विभिन्न अंगों के बीच पाए जाने वाले प्रकार्यात्मक सावयवी संबंधों में है। उपरोक्त परिभाषा में श्री लुंडबर्ग ने क्षेत्रीयता को विज्ञान की एक शाखा के रूप में देखा है, जिसका कि अध्ययन विषय दूसरे क्षेत्रों के संदर्भ में एक क्षेत्र के लोगों का सामाजिक व्यवहार है। इस दृष्टिकोण से क्षेत्रीयता भी मानव व्यवहार की एक विशेष अभिव्यक्ति है, और इस अभिव्यक्ति की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यह अपने क्षेत्र की परिस्थितियों द्वारा प्रभावित और निर्देशित होती रहती है, अर्थात यह अपने क्षेत्र की परिस्थितियों द्वारा प्रभावित और निर्देशित होती रहती है, अर्थात इसमें एक क्षेत्र विशेष की परिस्थितिगत आवश्यकताओं की झलक सुस्पष्ट देखने को मिलती है। क्षेत्रीयता इस बात की द्योतक है कि लोगों का एक क्षेत्रीय चरित्र होता है और उसी के संदर्भ में उनके व्यवहारों को वास्तविक अर्थ में समझा जा सकता है। प्रोफेसर बोगार्डस ने लिखा है कि यदि किसी भौगोलिक क्षेत्र का आर्थिक साधन इस भांति विकसित हो जाए कि उनके लिए अपनी विलक्षणता को बनाए रखना संभव हो, तो वहां के लोगों में सामूहिक हितों का विकास और इस प्रकार क्षेत्रीय आदर्शों का विकास हो सकता है। यहीं से क्षेत्रीयता की नींव पड़ती है। प्रोफेसर बोगार्डस ने यह भी लिखा है कि क्षेत्रीयता में एक सांस्कृतिक समग्रता निहित होती है। एक क्षेत्र के सांस्कृतिक लक्षणों में कुछ न कुछ समानता होती है। एक क्षेत्र का अपना एक सांस्कृतिक इतिहास होता है। इसी के आधार पर उस क्षेत्र के लोगों के विचारों भावनाओं क्रियाओं तथा व्यवहारों में एक समानता या विलक्षणता पनप जाती है और उसे बनाए रखने का भी प्रयत्न किया जाता है। फिर भी इस क्षेत्रीय आदर्शों तथा स्वार्थों को इतना अधिक बढ़ने या उग्र रूप धारण करने नहीं दिया जाता कि वह राष्ट्रीय हित का हनन कर सके। इसलिए डॉक्टर मुखर्जी ने लिखा है कि क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता के अधीन है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि क्षेत्रीयता एक क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों के अपने क्षेत्र के प्रति वह विशेष लगाव, वह अपनापन की भावना है, जिसे कि कुछ सामान्य आदर्श व्यवहार विचार तथा निवास के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। अगली हेडिंग है क्षेत्रीयता का संकीर्ण अर्थ। विस्तृत अर्थ में क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता के अधीन है, अर्थात इसके अंतर्गत इस प्रकार की किसी भी क्रिया भावना या विचार को सम्मिलित नहीं किया जाता है जो कि राष्ट्रीय स्वार्थों के लिए या राष्ट्रीय एकता के लिए घातक सिद्ध हो। पर क्षेत्रीयता का यह विस्तृत रूप बहुधा विकृत हो जाता है और उसमें इस प्रकार के संकीर्ण मनोभाव पनप जाते हैं कि एक क्षेत्र के लोग केवल अपने ही क्षेत्र के स्वार्थों को सर्वोपरि मानते हुए उनकी रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं। इस संकीर्ण रूप में क्षेत्रीयता का अर्थ उन आदर्श व्यवहार विचार तथा कार्यक्रमों से होता है जो कि एक क्षेत्र विशेष के लोगों के मन में मिथ्या गौरव व श्रेष्ठता की भावना को पनपाते हैं और उसी आधार पर वे अपने समस्त राजनीतिक तथा आर्थिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए इस भांत तत्पर हो जाते हैं कि विस्तृत राष्ट्र के स्वार्थों तथा राष्ट्रीय एकता की आवश्यकताओं को भी वे भुला देते हैं। क्षेत्रीयता का यह रूप उस क्षेत्र के लोगों में यह भावना भर देता है कि उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनका इतिहास तथा सामाजिक परंपराएं ही श्रेष्ठ हैं, और इसीलिए उस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए हर संभावित सुविधाओं का होना आवश्यक है तथा वे सुविधाएं उन्हें उनके अधिकार के रूप में ही उपलब्ध होनी चाहिए। मांग यह होती है कि उस क्षेत्र को प्रशासनिक अधिकार आधिकारिक प्राप्त हो, उनकी समस्याओं पर पहले ध्यान दिया जाए, उनकी भाषा को राष्ट्रीय आधार पर मान्यता प्राप्त हो तथा समस्त राष्ट्रीय विषयों के संबंध में उनके महत्व को अवश्य ही स्वीकार किया जाए। इन सब के लिए यदि उन्हें संपूर्ण राष्ट्र से अपना नाता ढीला भी करना पड़े तो उनके लिए भी वे तैयार रहते हैं। इस अर्थ में क्षेत्रीयता पृथकता के नीति की सार्थकता भी बन सकती है। हेडिंग है क्षेत्रीयता की प्रकृति। विस्तृत अर्थ में क्षेत्रीयता या क्षेत्रवाद एक क्षेत्र में पाए जाने वाली कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समानताओं पर आधारित होता है। यह क्षेत्र एक ही राष्ट्र या समाज का एक अंग हो सकता है अथवा इसके अंतर्गत एकाधिक छोटे मोटे ऐसे राष्ट्रों का भी समावेश हो सकता है जो कि अपनी भौगोलिक स्थिति, आर्थिक साधन, भाषा, धर्म तथा धर्म स्वभावों के संबंध में समान हो, परंतु क्षेत्रीयता का उग्र व संकुचित रूप कुछ दूसरा ही होता है जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय स्वार्थों को राष्ट्रीय स्वार्थों से भी कुछ अधिक महत्वपूर्ण मान लिया जाता है। कुछ भी हो, क्षेत्रीयता की वास्तविकता को समझने के लिए हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके अंतर्गत पहली हेडिंग है क्षेत्रीयता स्थानीय देशभक्ति तथा क्षेत्रीय श्रेष्ठता की भावना को बल देती है। एक क्षेत्र समूह की अपनी एक सामान्य संस्कृति होती है और उसी समानता के आधार पर वहाँ के निवासियों में कुछ सामान्य आदर्श भावनाएं, धारणाएं तथा विचार पनप जाते हैं और साथ ही कुछ विश्वास भी लोगों के दिल में घर कर जाता है कि ये आदर्श भावनाएं व धारणाएं आदि अन्य क्षेत्रों के आदर्श भावनाओं व धारणाओं से कहीं अधिक अच्छी या श्रेष्ठ हैं। साथ ही उस क्षेत्र में पाई जाने वाली सामान्य भाषा, सामान्य संस्कृति, परंपरा, समान ऐतिहासिक घटनाएं तथा समान सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समस्याएं वहां के लोगों में स्थानीय देशभक्ति अर्थात अपने तथा क्षेत्र के प्रति विशेष लगाव को पनपने में सहायक होती हैं। यह विशेष लगाव और श्रेष्ठता की भावना अन्य क्षेत्रों के साथ तनाव की स्थिति को उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध होती है। दूसरी हेडिंग है क्षेत्रीयता एक सीखा हुआ व्यवहार है। एक क्षेत्र समूह के सदस्यों में अपने क्षेत्र के प्रति जो विशेष लगाव होता है और उनमें अपने क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को अन्य क्षेत्र की तुलना में श्रेष्ठ समझने की जो भावना देखने को मिलती है वह सब सीखा हुआ व्यवहार होता है। प्रजाति या शारीरिक विशेषताओं की भांति क्षेत्रीयता की भावना प्रजनन या वंशानुक्रमण की प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती, अपितु वह तो भाषा व अन्य प्रतीकों के माध्यम से विचारों के आदान प्रदान के द्वारा तथा सामाजिक अंतःक्रियाओं के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित होती रहती है और इसी भांति क्षेत्रीयता की भावना की निरंतरता बनी रहती है। अपनेपन को न केवल विकसित करती है अपितु उसके सांस्कृतिक, सामाजिक व आर्थिक विरासत में अपने को एक सक्रिय हिस्सेदार समझने तथा उसी संदर्भ में व्यवहार करने को भी प्रेरित करती है। तीसरी हेडिंग है क्षेत्रीयता की मात्राएं अनेक हो सकती हैं। क्षेत्रीयता की इस प्रकृति को दो पृथक दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। प्रथम तो यह कि क्षेत्रीयता की मात्रा उदार से उग्र तक हो सकती है, अर्थात क्षेत्रीयता का स्वरूप इतना उदार हो सकता है कि वह कई समान राष्ट्रों को अपनी बाहों में समेट ले और सदा राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए क्रियाशील हो। इसके विपरीत क्षेत्रीयता का रूप इतना उग्र हो सकता है कि वह अपने क्षेत्र को ही सर्वोपरि मानकर अपने हितों के सम्मुख राष्ट्रीय हितों की बलि चढ़ाने में तनिक भी संकोच न करे। इन दोनों विपरीत छोरों के बीच क्षेत्रीयता का रूप या स्वरूप कम ज्यादा उदार या उग्र हो सकता है। दूसरे अर्थ में क्षेत्रीयता की भावना विभिन्न क्षेत्र के लोगों में अथवा एक ही क्षेत्र के सभी लोगों में समान न होकर अलग अलग होती है। उदाहरणार्थ भारत के उत्तरी क्षेत्र के लोग अपनी क्षेत्रीय विरासत के संबंध में जितना अधिक जागरूक हैं उतनी जागरूकता मध्य भारत के क्षेत्र के लोगों में न भी हो सकती है, अथवा उनकी वह जागरूकता दक्षिणी क्षेत्र के लोगों की उग्र जागरूकता के सामने फीकी लगती हो। उसी प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि दक्षिण क्षेत्र के सभी लोगों में अपनी क्षेत्रीय विरासत के प्रति समान सचेतता है। विभिन्न लोगों में यह सचेतता कम या अधिक उदार या उग्र हो सकती है और व्यवहारिक तौर पर होती भी है। चौथी हेडिंग है नकारात्मक क्षेत्रीयता के फलस्वरूप क्षेत्रीय सुशासन यहाँ तक कि राजनीतिक पृथक्करण की मांग प्रस्तुत की जा सकती है। अपनी क्षेत्रीय विलक्षणता व श्रेष्ठता को बनाए रखने की धुन में वहाँ के लोग क्षेत्रीय सुशासन की मांग कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के लोगों में आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकारों को हथियाने के लिए आपस में एक उग्र प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों के बीच कटु भाव उत्तर उत्तर बढ़ता रहता है। यह स्थिति न तो राष्ट्रीय एकता के लिए और न ही राष्ट्रीय प्रगति के लिए हितकर सिद्ध होती है। पांचवी हेडिंग है क्षेत्रीयता के मनोभावों की संकीर्णता ही अभिव्यक्ति होती है। अपने उग्र रूप में क्षेत्रीयता कभी भी लोगों में विस्तृत मनोभाव को पनपने में सहायक सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि यह तो उस मनोभाव का प्रतिनिधित्व करती है जिसके अनुसार अपने ही क्षेत्र की सांस्कृतिक परंपराओं, धर्म, भाषा, आदर्श, सिद्धांत तथा आचारों को अन्य क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ माना जाता है और उसी रूप में उन्हें प्रतिस्थापित करने के लिए हर उचित अनुचित पग उठाए जाते हैं। इसीलिए अपने क्षेत्र में बसे अन्य क्षेत्र के लोगों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है और कभी कभी तो उन्हें सामाजिक आर्थिक अन्याय का शिकार तक बना दिया जाता है और साथ ही क्षेत्रीय भक्ति तथा क्षेत्रीय वफादारी के नाम पर इन सब पक्षपातपूर्ण अन्यायों का कोई न कोई औचित्य भी ढूंढ लिया जाता है। अगली हेडिंग है क्षेत्रीयता के विकास के कारक। पहला, भौगोलिक कारक। बहुधा भौगोलिक कारक क्षेत्रीयता के विकास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभावपूर्ण कारक बन जाता है। भारत देश का एक उत्तम उदाहरण है। भारत चार अस्पष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में स्वाभाविक रूप से विभक्त है और वे क्षेत्र हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, गंगा सिंधु का विशाल मैदान, दक्षिणी पठार तथा मध्य भारत का रेगिस्तानी क्षेत्र। इन चारों क्षेत्रों की भौगोलिक दशाएं अलग अलग ही नहीं कुछ विषयों में एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत भी हैं। फलतः विभिन्न क्षेत्रों या प्रदेशों में जो विभाजन हुआ उसका प्रभाव जीवन के प्रत्येक पक्ष पर पड़ा है और एक क्षेत्र के सामाजिक, धार्मिक रीति रिवाज, भाषा, सांस्कृतिक परंपराएं, पोशाक, आभूषण, प्रकृति, खान पान, रहन सहन आदि दूसरे क्षेत्रों से भिन्न रहे हैं। इस भिन्नता ने क्षेत्रीयता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दूसरी हेडिंग है ऐतिहासिक कारक। भौगोलिक कारकों की भांति ऐतिहासिक कारक भी क्षेत्रीयता के विकास में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इस देश की विशालता और विभिन्न क्षेत्रों के होने से भारत प्राचीन और मध्यकाल में विस्तृत प्रादेशिक राज्यों का देश रहा है। यद्यपि कुछ शक्तिशाली महत्वाकांक्षी राजाओं ने ऐसे साम्राज्य स्थापित किए जिनमें सारा भारत था, फिर भी देश की विशालता और यातायात के साधनों के अभाव से एक अखंड केंद्रीय राज्य अधिक दिनों तक भारत में बना न रह सका। जब कभी भी केंद्रीय सम्राट शक्तिहीन और अस्थिर हुआ तभी अधीनस्थ प्रदेशों और सामंतों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और स्थानीय स्वशासन को चालू कर दिया। भारत के ऐतिहासिक विकास के दौरान एक बार नहीं असंख्य बार ऐसा ही हुआ जिसके फलस्वरूप क्षेत्रीय स्वशासन को स्थापित करने की इच्छा इस देश की एक राजनीतिक परंपरा बन गई। उसी परंपरा के हस्तांतरण के कारण ही शायद आज नागालैंड, तमिल प्रदेश, पंजाबी सूबा, आंध्र विभाजन आदि की मांग रखी गई है। तीसरी हेडिंग है राजनीतिक कारक। अनेक राजनीतिक कारक भी क्षेत्रीयता के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। भारत में कुछ राजनीतिक संगठन या पार्टियां ऐसी हैं जो कि क्षेत्रीयता की भावना को भड़काकर लोकप्रिय होने का प्रयत्न करती हैं और साथ ही अपने संकीर्ण स्वार्थों की सिद्धि करने में सफल होती हैं। ये पार्टियां कभी कभी तो धार्मिक और भाषा संबंधी जामा भी पहने होती हैं जिससे कि लोगों की लोकप्रिय भावनाओं को उकसाना उनके लिए सरल हो जाए। धर्म और भाषा की आड़ लेकर यह दल एक क्षेत्र के लोगों को यह लालच दिखलाते रहते हैं कि उनके अपने प्रदेश को शीघ्र ही एक स्वतंत्र सत्ता प्राप्त होने वाली है जिसके बाद वे अपने क्षेत्र के समस्त खोए हुए गौरव व परंपराओं को पुनर्जीवित करने में सफल होंगे। इस प्रकार क्षेत्रीय दल क्षेत्रीयता के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक बन जाते हैं। इतना ही नहीं, क्षेत्रीय नेताओं का भी इस दिशा में पर्याप्त सहयोग रहता है। ये क्षेत्रीय नेता खूब प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं और केंद्रीय सरकार पर न केवल अपना प्रभाव विस्तृत किए होते हैं अपितु अपने क्षेत्रीय स्वार्थों की सिद्धि के मामले में केंद्रीय सरकार की उपेक्षा करने तक को नहीं हिचके जाते। ये नेता केवल अपने ही क्षेत्र के विषय में सोचते हैं और अन्य क्षेत्रों के स्वार्थों को कुचल देने में उन्हें संकोच नहीं होता। चौथी हेडिंग है सांस्कृतिक कारक। क्षेत्रीयता के विकास में सांस्कृतिक कारक भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। भारत की भौगोलिक परिस्थितियों ने भारत को न केवल कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में अपितु उतने ही सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी बांट दिया है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र का अपना एक विशिष्ट सांस्कृतिक प्रतिमान है और उस प्रतिमान से एक अजीब लगाव उस क्षेत्र के लोग पनपा चुके हैं। यह लगाव कभी कभी इतना अस्पष्ट व एक तरफा हो जाता है कि एक क्षेत्र के लोग अपने सांस्कृतिक प्रतिमान को अन्य क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ समझने लगते हैं। उदाहरणार्थ उत्तरी क्षेत्र के लोगों को यह कहते हुए गर्व होता है कि उन्हीं के क्षेत्र में वैदिक सभ्यता और सांस्कृतिक का उदय हुआ। उनका दावा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता और आर्य सभ्यता संपूर्ण भारत को नया प्रकाश देने वाली थी और उन्हीं का क्षेत्र भारतीय सांस्कृतिक ललित कला साहित्य यहाँ तक कि राजनीति का सर्वप्रमुख केंद्र रहा और अब भी है। हिंदी भाषा इसी क्षेत्र की मूल भाषा है और स्वतंत्र भारत के सभी प्रधानमंत्री इसी क्षेत्र के हैं। दूसरी ओर भारत के दक्षिणी क्षेत्र के लोगों का यह दावा है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति के अनेक मौलिक तत्व उनके ही क्षेत्र में विद्यमान हैं। उनका क्षेत्र द्रविड़ सभ्यता संस्कृति और भाषाओं आदि का स्थान है। इस अर्थ में आदि भारत का सच्चा रूप तो उनका ही क्षेत्र है। इस रूप का दर्शन भारत के अन्य किसी भी क्षेत्र में नहीं हो सकता। साथ ही वहाँ के लोग सदा से ही बलिष्ठ परिश्रमी साहसी और स्वतंत्रता प्रिय हैं और उस स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ये अपना सब कुछ बलिदान करने में भी कभी न हिचकिचाए। यही उनका परंपरागत गौरव है। स्पष्ट है कि उत्तरी या दक्षिणी क्षेत्र के लोगों की ये सभी दावे झूठे न होते हुए भी क्षेत्रीयता के विकास में सहायक सिद्ध होते हैं। इसके अंतर्गत पांचवी हेडिंग है भाषावाद। सांस्कृतिक कारकों में क्षेत्रीयता के विकास का एक महत्वपूर्ण कारक भाषावाद भी है। भारत में स्थिति यह है कि एक उपसांस्कृतिक क्षेत्र के मुख्य समूह के सदस्य एक विशेष भाषा को बोलते तथा लिखते हैं। इसे क्षेत्रीय या प्रादेशिक भाषा कहा जाता है। प्रत्येक प्रादेशिक भाषा के बोलने वालों का अपनी भाषा के प्रति अत्यधिक संवेगात्मक लगाव होता है, जिसके फलस्वरूप वे यह मान बैठते हैं कि उनकी ही भाषा की शैली शब्दावली साहित्यिक समृद्धि तथा गहनता अन्य सभी भाषाओं से कहीं अधिक आकर्षक व श्रेष्ठ प्रकृति की है। केवल अपनी ही भाषा को इस प्रकार श्रेष्ठ समझना और अन्य सभी प्रादेशिक भाषाओं को ही मान लेना प्रादेशिक दूरी को बढ़ाता है और क्षेत्रीयता का विकास करता है। हेडिंग है क्षेत्रीयता के दुष्परिणाम। इसके अंतर्गत पहली हेडिंग है विभिन्न क्षेत्रों के बीच संघर्ष तथा तनाव। संकीर्ण क्षेत्रवाद का जो सर्वप्रथम दुष्परिणाम हमें भारत में देखने को मिलता है वह यह है कि इसके कारण विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक राजनीतिक यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक संघर्ष और तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक क्षेत्र अपने स्वार्थों या हितों का सर्वोच्च स्थान दे बैठता है और उसे यह चिंता नहीं होती कि दूसरे क्षेत्र को कितना नुकसान होगा। आज विभिन्न प्रदेशों के बीच सीमा संबंधी झगड़ा उत्पन्न होता है। एक विश्वविद्यालय अमुक क्षेत्र में न खोलकर हमारे क्षेत्र में खोला जाए, इस बात को लेकर उस क्षेत्र के लोग आंदोलन करते हैं। इस्पात प्रोजेक्ट की स्थापना का विषय भी घोर आंदोलन का विषय बन जाता है। यहाँ तक कि लोकसभा की सब बैठकें उत्तरी क्षेत्र में ही क्यों हों, क्यों न दक्षिणी क्षेत्र में भी लोकसभा की बैठकें हों, यही वाद विवाद का अच्छा विषय बन जाता है और विभिन्न क्षेत्रों के बीच कटु भावना पन पाता है। दूसरी हेडिंग है राज्यसभा केंद्रीय सरकार के बीच संबंधों का विकृत होना। भारत में क्षेत्रीयता के कारण केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच का संबंध कभी कभी अत्यंत कटु रूप धारण कर लेता है। प्रत्येक क्षेत्र के स्वार्थ समूह क्षेत्रीय नेतागण बड़े बड़े उद्योगपति तथा राजनीतिज्ञ अपने अपने क्षेत्रों के स्वार्थों को सर्वरूप में प्राथमिकता देते हैं और केंद्रीय सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करते हैं। केंद्रीय सरकार जिसकी तरफ भी थोड़ा सा झुक गई वही विवाद बन जाता है और केंद्रीय तथा राज्य सरकारों का पारस्परिक संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं रह पाता है। तीसरी हेडिंग है स्वार्थी नेतृत्व व संगठन का विकास। क्षेत्रीयता का एक और दुष्परिणाम यह होता है कि इसके फलस्वरूप अलग अलग क्षेत्र में कुछ इस प्रकार के नेतृत्व व संगठनों का विकास हो जाता है जो कि जनता की भावनाओं को उभार कर अपने संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते हैं। इस प्रकार के नेताओं व संगठनों को न तो क्षेत्रीय हितों और न ही राष्ट्रीय हितों का तनिक भी ख्याल रहता है। उनका समस्त ख्याल तो अपनी लोकप्रियता को बढ़ाकर अपने ही स्वार्थों को सिद्ध करने पर केंद्रित हो जाता है। ये नेतागण कभी तो भाषा के प्रश्न को लेकर हंगामा मचाते हैं और कभी केंद्रीय सरकार के पक्षपातपूर्ण व्यवहार के विरुद्ध नारा लगाने के लिए सामने आ खड़े होते हैं, चाहे इसमें कोई भी समस्या वास्तविक हो या काल्पनिक। ऐसे नेताओं और संगठनों से किसी का कुछ नहीं भला होता, फिर भी क्षेत्रीयता की आड़ में इन्हें पनपने का अच्छा मौका मिल जाता है। चौथी हेडिंग है भाषा की समस्या का अधिक जटिल होना। क्षेत्रीयता का एक और बुरा प्रभाव यह होता है कि क्षेत्रीय वफादारी भाषा की समस्या को सुलझाने में सहायक होने के स्थान पर उसे और भी जटिल बनाने में मदद करती है। क्षेत्रीय वफादारी का सीधा संबंध क्षेत्रीय या प्रादेशिक भाषा के प्रति विशेष लगाव से होता है, जिसके कारण प्रादेशिक भाषा को आवश्यकता से अधिक महत्व प्रदान करने की गलती उस क्षेत्र के लोग कर बैठते हैं। परिणाम यह होता है कि अन्य किसी भाषा के प्रति सहिष्णुता की भावना बिल्कुल ही नहीं रह जाती और विभिन्न भाषा भाषी क्षेत्रों के बीच भाषा के प्रश्न को लेकर ही कटुता बढ़ती चली जाती है। क्षेत्रीयता का यह परिणाम जनकल्याण और राष्ट्रीय प्रगति के दृष्टिकोण से अत्यंत घातक सिद्ध होता है। पांचवी हेडिंग है राष्ट्रीय एकता को चुनौती। संकीर्ण क्षेत्रीयता राष्ट्रीय एकता के लिए एक चुनौती बन जाती है। भारत आज एक संक्रमण काल से गुजर रहा है, जबकि शताब्दियों पुरानी परंपराओं को त्याग कर आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा है। इस नाजुक दौर पर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तन की गति एक समान नहीं है। अतः देश की सामाजिक व्यवस्था में असंतुलन की स्थिति विद्यमान होनी स्वाभाविक ही है। ऐसी अवस्था में क्षेत्रीयता के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों के बीच जो तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वह राष्ट्रीय एकता की समस्त धारणाओं और भावनाओं का तुषारापात करती है। क्योंकि क्षेत्रीयता के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों के लोगों में कभी क्षेत्रीय स्वार्थों को लेकर, कभी राजनीतिक स्वशासन या पृथक राज्य के प्रश्न को लेकर, तो कभी प्रादेशिक भाषा के प्रश्न को लेकर जो झगड़े या मन मुटाव खड़े हो जाते हैं, वे राष्ट्रीय एकता के लिए घातक सिद्ध होते हैं। अगली हेडिंग है क्षेत्रीयता को रोकने के उपाय। राष्ट्रीय जीवन के लिए क्षेत्रीयता कोई अच्छी चीज नहीं है, इस पर रोक लगाना ही उचित है। इस संबंध में निम्नलिखित उपायों को सुझाया जा सकता है। पहला, केंद्रीय सरकार की नीति कुछ इस प्रकार होनी चाहिए कि सभी उप सांस्कृतिक क्षेत्रों का संतुलित आर्थिक विकास संभव हो, जिससे कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक तनाव कम से कम हो। दूसरा, सभी क्षेत्रों के लोगों को समान आर्थिक सुविधाएं प्रदान की जाए, जिससे कि अनावश्यक प्रतिस्पर्धा व ईर्ष्या की भावना पनप न सके। तीसरा, जहां तक संभव व व्यवहारिक हो, उप सांस्कृतिक क्षेत्रों की उचित आकांक्षाओं की पूर्ति की जाए, यदि उनका कोई बुरा प्रभाव राष्ट्रीय जीवन व संगठन पर न पड़ता हो। चौथा, भाषा संबंधी झगड़ों का हल शीघ्र ही ढूंढ लिया जाए। इस संबंध में सबसे उचित हल यह है कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को सामान्य मान्यता प्रदान की जाए। पांचवा, हिंदी भाषा को किसी भी क्षेत्रीय समूह पर जबरदस्ती लादा न जाए, अपितु इस भाषा का प्रचार व विस्तार इस ढंग से किया जाए कि विभिन्न क्षेत्रीय समूह स्वतः इसे संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार कर लें। छठा, पर सभी उत्साह तथा साधन केवल हिंदी भाषा के विकास में ही न लगाए जाएं, अपितु सुनिश्चित योजना बनाकर सभी प्रादेशिक भाषाओं को उनकी अपनी विशिष्टता के अनुसार विकसित होने का समान अवसर प्रदान किया जाए। सातवां, प्रचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के सांस्कृतिक लक्षणों के विषय में लोगों के सामान्य ज्ञान को बढ़ाया जाए, जिससे कि एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के प्रति अधिक सहनशीलता की भावना को पनपा सके। आठवां, केंद्रीय मंत्रिमंडल में सभी क्षेत्रों के नेताओं का संतुलित प्रतिनिधित्व हो, जिससे कि क्षेत्रीय पक्षपातपूर्ण नीतियों का खंडन हो सके और केंद्रीय सरकार के इरादों पर किसी को भी संदेह न रहे। नौवां, केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच पारस्परिक संबंधों को अधिकाधिक सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए दोनों ही पक्षों को इस प्रकार की नीति तथा आचार संहिता को अपनाना चाहिए कि पारस्परिक विश्वास न टूट जाए और ऐसे अवसर कभी न आए कि उन्हें एक दूसरे पर कीचड़ उछाड़ने की आवश्यकता हो। संकीर्ण मनोभाव वाले स्वार्थी नेतागण इसी प्रकार के अवसरों की राह ताकते रहते हैं और मौका मिलते ही क्षेत्रीयता की भावना को भड़काने का प्रयत्न करते हैं। राज्य सरकारों और विशेषकर केंद्र सरकार को इस प्रकार का मौका क्षेत्रीय नेताओं को कभी नहीं देना चाहिए। स्मरण है कि उपरोक्त सभी उपाय एक दूसरे के पूरक हैं और उसी रूप में उन्हें अपनाया जाना चाहिए, पर क्षेत्रीयता का वास्तविक हल तब तक संभव नहीं है जब तक प्रत्येक भारतवासी के मन में यह भावना नजर पकड़ ले कि हमारा अपना क्षेत्र तो अपना है ही है, पर उससे कहीं विशाल एक क्षेत्र भारत उससे कहीं अधिकाधिक अपना है। हमारा अपना क्षेत्र तो एक नदी मात्र है, पर भारत तो एक महान समुद्र है। नदी की सार्थकता तो उस समुद्र की विशालता में विलीन हो जाने में ही है। यही उसकी परम गति, परम मुक्ति है। उस मुक्ति का संदेश भारत के हर घर तक पहुंचना चाहिए। इस प्रकार आपका क्षेत्रीयता नामक अध्याय यहीं समाप्त होता है, साथ ही साथ आपका सिलेबस भी यहीं समाप्त होता है। मैं चंदन कुमार आपको एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ।